ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा की सत्या शर्मा समिति की अध्यक्ष और सुंदर सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली सरकार शहर में लाल किला, कर्तव्य पथ और लोधी गार्डन सहित 10 प्रमुख स्थलों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गुजरात के अहमदाबाद में आज दोपहर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। हादसा मेघानी नगर के गुजसैल के पास हुआ। एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। अलर्ट मिलने के तुरंत बाद अग्निशमन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बातचीत की। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक, निदेशक जांच और जांच टीम भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि सभी विवरणों के समन्वय के लिए मंत्रालय में एक परिचालन नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया गया है। इसके संपर्क नंबर हैं 011-24-61-08-43 और दूसरा संपर्क नंबर है 9650-39-18-59। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। श्री नायडू ने विमान हादसा स्थल पर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। श्री नायडू ने कहा कि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं।
A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, State Police, Medical Department, including Aviation Concerned Departments. Everyone has attended immediately, the Fire Department. To the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And we are trying to extend all the help that can be done.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक हृदय विदारक आपदा है और उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना को हृदय विदारक बताया है। उन्होंने कहा कि वे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनकी प्रार्थनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल से बात की और स्वास्थ्य सुविधाओं और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस बीच एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। चेयरमैन ने कहा कि एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और इससे जुड़ी जानकारी के लिए सहायता टीम भी गठित की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने इस हादसे को दुखद और स्तब्ध कर देने वाला बताया। उपराज्यपाल ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कठिन समय में हम सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सभी यात्रियों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गुजरात में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद रेलवे अहमदाबाद से यात्रियों की सुविधा के लिए आज रात 2 विशेष ट्रेनें चलाएगा। पहली ट्रेन अहमदाबाद से रात 11:30 बजे नई दिल्ली के लिए चलेगी और दूसरी ट्रेन अहमदाबाद से मध्यरात्रि 12 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का चुनाव आज संपन्न हो गया। भाजपा की सत्या शर्मा को स्थायी समिति का अध्यक्ष और भाजपा के ही सुंदर सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। स्थायी समिति के सभी 18 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। निगम महापौर राजा इकबाल सिंह ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। वहीं नवनिर्वाचित सुश्री शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य समर्पित भाव से काम करके दिल्ली को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाना है। सुश्री शर्मा ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। सभा में मृतकों के लिए मौन भी रखा गया। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद बांसुरी स्वराज, NDMC अध्यक्ष केशव चंद्र और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल उपस्थित थे। इस दौरान 120 मेगावाट अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट ऊर्जा और जल मीटर, हाइड्रोलिक उच्च दबाव जेटिंग मशीन की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि बैठक में दिल्ली के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
हमारी NDMC की दूसरी काउंसिल की मीटिंग थी और उसमें जो सबसे पहला फैसला लिया गया, ये हमारे जो NDMC के एम्प्लॉयज थे जिनकी डेथ हो गई थी और उनके बाद में उनके बच्चों ने हमारे यहाँ पे NDMC में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, मगर वो घर को कंटिन्यू कर रहे थे। तो NDMC की पॉलिसी में 2 साल तक तो आप घर को कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर उसके बाद में वो उनके ऊपर में पेनल्टी लगाती। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे, करोड़ों रुपए बकाया था, आज हमने स्कीम लाकर वो सभी को माफ कर दिया है। तो ये एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली के राजघाट पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत सरकार की प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। संवाददाताओं से बात करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि इस कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों के उत्पादों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
लोक संवर्धन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे गांव में जो कारीगर होते हैं, जो हुनर है, उनका सामान, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीजें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा।
इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकारों द्वारा लाइव सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किए जाएंगे। लोक संवर्धन पर्व का समापन रविवार को होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 6:30 बजे से 7:40 तक सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित 1 लाख से अधिक योग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष इस दिवस का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में कहा कि मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे।
पूरे भारत में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत एकजुट हो रहे हैं, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और वैश्विक सद्भाव के लिए योग के जरिए वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को एक ऐसा यादगार कार्यक्रम बनाने के सरकार के इस प्रयास में शामिल हो, जो लोगों को योग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करे।
आयुष मंत्री ने कहा कि योग संगम की मेजबानी के लिए देशभर से 65,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार शहर में 10 बड़े योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के लाल किला, कर्तव्य पथ और लोधी गार्डन जैसे प्रमुख स्थलों पर आयोजित होंगे। इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय पुरातत्व विभाग और दिल्ली नगर निगम के सहयोग से 100 से अधिक स्थानों पर भी योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इन योग कार्यक्रमों में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने भारत और विश्व स्तर पर योग को एक परिवर्तनकारी स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने में मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला है। श्री जाधव ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट में वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय के निर्माण से लेकर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में बात की।
हमारे प्रधानमंत्री जी के में निर्देश थे कि ये 11वां जागतिक योग दिन पूरे दुनिया में और विशेषकर हमारे भारत देश में भी बड़े पैमाने पर और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल करके हमको एक बड़ा उत्साह योग का उत्सव हमें यहाँ पर मनाना है। इसीलिए हमारे आयुष विभाग ने बहुत सारी तैयारी की। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आयुष विभाग भी इसमें काम कर रहा है, हमारे सभी मंत्रालय सभी को हम इस इवेंट में शामिल कर रहे हैं।
ये विशेष भेंट वार्ता आज रात 9:30 पर 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और पूरे आकाशवाणी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये विशेष श्रृंखला विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष का हिस्सा है। ये साक्षात्कार हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर माउंट एवरेस्ट अभियान दल ने खराब मौसम और कठिन भूभाग के बावजूद शिखर पर 100% सफलता दर हासिल की है। इस अभियान दल में 5 लड़के, 5 लड़कियां और 9 सिखिए पर्वतारोही शामिल थे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए NCC दल ने अपने अनुभव साझा किए। पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय की पर्वतारोही प्रतिमा राय ने कहा कि पहाड़ पर चढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण था।
जब हम ऊपर समिट के लिए जा रहे थे तो बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह आए, तो फिजिकल चैलेंज तो ऐसे हो जा रहा था क्योंकि वी हैव बीन ट्रेन्ड सिंस 8 मंथ्स। वेदर और जो अल्टीट्यूड का था, इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस इतना हाइट पे जाने के लिए, और ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था। 18 मई का फर्स्ट समिट हमने किया था तो NCC टीम ने उस दिन का, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट डे टू क्लाइम द एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब इंडिया का फ्लैग ऊपर जाके फहराया तो बहुत प्राउड फील हो रहा था।
दल के सबसे कम उम्र के सदस्य 16 वर्षीय सचिन कुमार ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत बताई।
इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े सपनों को छूने की जो दृढ़ संकल्प हमने लिया वो NCC ने पूरा करवाया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं इतनी ऊंचाई हासिल करूंगा अपनी लाइफ में, और हमारी कड़ी ट्रेनिंग हुई 1 साल की जिसकी वजह से हम माउंट एवरेस्ट चढ़े। और मैं अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि दृढ़ संकल्प ही हमें हमारे सपनों की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसमें कई कठिनाइयां आएंगी बट हमें रुकना नहीं है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राजधानी के नागरिकों में सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार को विकसित करने के लिए दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त सत्यवीर कटारा की देखरेख में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया जिसमें 3,500 से अधिक पैदल यात्री, दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक और साइकिल चालक शामिल हुए। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्कूली छात्रों, वाहन चालकों, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को यातायात नियमों और अनुशासित सड़क उपयोग के महत्व के बारे में जागरूक करना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और पंजाब में इस महीने की 14 तारीख तक भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज लोगों को तेज धूप के साथ लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा की सत्या शर्मा समिति के अध्यक्ष और सुंदर सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली सरकार शहर में लाल किला, कर्तव्य पथ और लोधी गार्डन सहित 10 प्रमुख स्थलों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।